नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। ई कॉमर्स मंच फर्स्ट क्राई की मूल कंपनी ब्रेन ब्रीज सॉल्यूशंस लिमिटेड ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के समक्ष बृहस्पतिवार को दस्तावेज दाखिल किए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के समक्ष दाखिल दस्तावेजों के अनुसार आईपीओ में 1816 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और कंपनी के शेयर धारकों द्वारा 5.44 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। बिक्री पेशकश में शेयर बेचने वालों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीपीजी, न्यूक्रेस्ट एशिया, एसवीएफ फ्रॉग लिमिटेड, एप्रिकॉट इन्वेस्टमेंट्स वैलेंट मॉरिशस, टीआईएमएफ, थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, श्रोडर्स कैपिटल और पीआई अपॉर्चुनिटी शामिल हैं। कंपनी के अनुसार नए निर्गम से प्राप्त राशि का इस्तेमाल भारत के साथ साथ सऊदी अरब में नई दुकानें और गोदाम खोलने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा पूंजी का उपयोग बिक्री तथा विपणन पहल के लिए किया जाएगा। फर्स्ट क्राई माँ बच्चों से जुड़े उत्पाद बेचती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने बृहस्पतिवार को कहा कि बीमा कंपनी रिजर्व बैंक के ऋण डेटाबेस क्रिलिक तक पहुंच को लेकर सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है और उसे पहुंच मिल जाने का भरोसा है। मोहंती ने जहां भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, यह एक विडंबना ही है कि ऋण खंड में सबसे बड़ा निवेशक होने के बावजूद हमारी ऋण या राष्ट्रीय ऋण डेटाबेस क्रिलिक तक हमारी पहुंच नहीं है। हम इसके लिए नियामक के साथ सक्रिय चर्चा कर रहे हैं और उस पहुंच को पाने के लिए आश्वस्त हैं। बड़े कर्जों से संबंधित सूचना के केंद्रीय संग्रहकर्ता क्रिलिक का संचालन आरबीआई करता है और इसके जरिए विभिन्न कर्जदाताओं की तरफ से गैर निष्पादित कर्जदारों एवं देनदारों पर कर्ज जोखिम का आकलन किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एलआईसी का अधिकांश ऋण निवेश केंद्र और राज्य सरकारों की ऋण प्रतिभूतियों में है। एलआईसी चेयरमैन ने कहा कि आरबीआई के क्रिलिक डेटा तक पहुंचना होना बीमाकर्ता के लिए जोखिम है क्योंकि इसकी देनदारियां दीर्घकालिक हैं जबकि संपत्ति अल्पकालिक है। उन्होंने कहा कि क्रिलिक तक पहुंचना होने से एलआईसी की तरफ नकारात्मक रूप से संतुलन झुकता है। ऑनलाइन खाद्य सामग्री डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो लिमिटेड को डिलीवरी शुल्क को लेकर 401.7 करोड़ रुपए की जीएसटी देनदारी का कारण बताओ नोटिस मिला है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में दावा किया कि वो राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि डिलीवरी साझेदारों की ओर से डिलीवरी शुल्क लिया जाता है। जोमैटो के अनुसार कंपनी को 26 दिसंबर 2023 को केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 74(1) के तहत जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय से कारण बताओ नोटिस मिला। कंपनी ने जोर देकर कहा कि उसका मानना है कि वो किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि डिलीवरी शुल्क डिलीवरी भागीदारों की ओर कंपनी द्वारा एकत्र किया जाता है। जोमैटो ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि वो कारण बताओ नोटिस का उचित जवाब देगी। जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी बाटा इंडिया को चेन्नई के अन्ना सलाई असेसमेंट सर्कल के राज्य कर अधिकारी से 60.56 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि नोटिस 2018-19 के वित्त वर्ष के लिए अंतिम ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए कई मुद्दों से संबंधित है। नोटिस पर 27 दिसंबर 2023 की तारीख है। अंतिम ऑडिट रिपोर्ट 25 दिसंबर को पेश की गई थी। रिपोर्ट में से मासिक जीएसटी रिटर्न में बाहरी आपूर्ति पर टर्नओवर में अंतर, GSTR-9 तथा GSTR-9C रिटर्न में बाहरी आपूर्ति पर कर में अंतर आदि जैसे मुद्दे उठाए गए थे। कंपनी ने कहा कि उसे शुरुआत में 27 अप्रैल 2023 को एक ऑडिट नोटिस मिला था और उसने जवाब में प्रासंगिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। बाटा इंडिया को अपना मामला पेश करने और विवादित मुद्दों पर अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 10 जनवरी 2024 का समय दिया गया है। बाटा इंडिया के अनुसार कंपनी के पास अपने बचाव के लिए पर्याप्त तथ्य हैं। इसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई असर नहीं होगा। साल 2024 बस कुछ ही दिन में दस्तक देने वाला है। भारत सरकार की तरफ से नए साल में पड़ने वाली छुट्टियों का सर्कुलर भी जारी हो गया है। हमने हाल ही में आपको 2024 में पड़ने वाली सभी सरकारी छुट्टियों की जानकारी दी थी। अब बात करें देश भर में बैंक हॉलीडेज की, तो जनवरी 2024 में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। साल के पहले महीने में 1 जनवरी को न्यू ईयर, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे जैसी बड़ी छुट्टियां हैं। इसके अलावा त्यौहार, नेशनल हॉलीडे, दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार की भी छुट्टियां शामिल हैं। गौर करने वाली बात है कि ये छुट्टियां पहले से शेड्यूल्ड हैं और ग्राहक इन दिनों बैंक ब्रांच विजिट नहीं कर सकेंगे, लेकिन मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा सकेगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।